पृष्ठ संख्या 127, अध्याय 11। टांगा धीरे धीरे एक बाजार को लांघ कर दूसरे बाजार में प्रवेश कर रहा था। अपने घर के बाहर ही नारंग साहब को एक टांगा मिल गया था। गाड़ीवान अपने फटीचर टांगे के बम पर बैठा था ताकि नारंग साहब के बैठ जाने पर टांगे का संतुलन बना रहे। खस खस कुची नुमा दाढ़ी वाला गाड़ीवान अपने टांगे और घोड़े की ही भांति जीर्ण शीर्ण लग रहा था। साज को ऐन घोड़े की पीठ पर रस्सी के टुकड़ों में बांधा गया था। घोड़े की पीठ पर दाईं ओर लाल सा घाव का निशान था, जिस कारण घोड़े की चमड़ी पर बार बार लहरें सी उठ रही थीं। बोसीदा सा टांगा दिल्ली की बोसीदगी का प्रतिरूप ही लग रहा था। नारंग साहब बैठते ही बतियाने लगे थे। अब टांग में दर्द उठता है, पैदल कचहरी तक नहीं जाया जाता, और झुककर बाईं टांग पर से पतलून ऊपर की ओर खिसकाते हुए बोले, यह हिस्सा बिल्कुल जैसे काट हो गया है। रात भर करवटे बदलता रहता हूँ, सो नहीं पाता। गाड़ीवान ने घूमकर अपनी सवारी की ओर देखा। उम्र उम्र की बात है साहिब, जवानी की बात और है, बुढ़ापे की और। इंजेक्शन लगवाता रहूँ तो थोड़ा आराम रहता है, पर आजकल इंजेक्शन बहुत महंगे हो गए हैं। जी बाबूजी, डॉट डॉट। खस खस दाढ़ी वाले ने बैठे ही बैठे कहा और सुस्त रफ्तार घोड़े की पीठ पर हल्का सा छांटा मारने के बाद चाबुक की लड़ी को बम के साथ ठकुरने लगा। नारंग साहब की छोटी छोटी आंखें घोड़े की पीठ पर लगी थीं। रात को अकेला पड़ा पड़ा हाय हाय करता रहता हूँ, उन्होंने बाई टांग पर झुक कर हाथ फेरते हुए कहा। एक लड़का है, कानपुर में रहता है, वहीं पर एक पूर्बिया लड़की से शादी करके बैठ गया है। जमुना नाम है लड़की का। गाड़ीवान ने सिर उठाकर नारंग साहब की ओर देखा। उसकी नज़र उनके काले कोट पर पड़ी। वकील हैं, बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसने मन ही मन कहा। लड़की यही ब्याही है, पर वह बस नहीं पाई। घर वाला सरकारी नौकर है, अच्छी तनख्वाह पाता है, पर उसने बच्चे को रख लिया है और इसे घर से निकाल दिया है। पृष्ठ संख्या 128। गाड़ीवान ने फिर घूमकर अपनी सवारी की ओर देखा। नारंग साहब के सिर पर रखी बड़ी सी सफ़ेद पगड़ी ढीली पड़ चुकी थी और उनकी आंखें अभी भी घोड़े की पीठ पर लगी थीं, और वह बराबर बोले जा रहे थे। कहता है मुझे शऊर नहीं है, अफसरों की सोसाइटी में तू बैठने उठने का ढंग नहीं जानती। मेरे दोस्त आते हैं तो तू गुमसुम बनी बैठी रहती है, पर असल में यह बात नहीं है। असल में उसकी आशनाई एक दूसरी लड़की से हो गई है, काली कलूटी कोई बंगालन है, उसी के दफ्तर में काम करती है, वह उसके साथ रहना चाहता है। जी, गाड़ीवान ने धीरे से कहा। अब वह पगला गई है, दिन भर सड़कों पर घूमती रहती है। मेरी टांग में दर्द रहता है, मैं उसके पीछे पीछे कहाँ भागूं। लोग यह तो नहीं समझते, अपनी परेशानियां मुझ पर लादते रहते हैं, मैं क्या क्या करूं। गाड़ीवान ने मुड़कर फिर नारंग साहब की ओर देखा और होठों ही होठों में या अल्लाह बुदबुदाया। मैंने उससे कहा भी है, एक बार नहीं बीसियों बार कहा है कि देख बेटी, तू उसकी मिन्नत समाजत कर, उसके दोस्तों से उसे कहलवा, उसके भाई बहन से मिल, उसके दिल में जो मलाल आ गया है उसे दूर कर दे, तेरा मामला सुलझ जाएगा। अब मैं और क्या कर सकता हूँ। नारंग साहब ने फिर बाईं टांग पर से अपने पतलून ऊपर की ओर खिसकाई और बोले, देखो इस वक्त भी सूजी हुई है, उंगली जोर से दबाओ तो झट से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। और उन्होंने दाएं हाथ का अंगूठा जोर से टखने के पास दबाया। अब मैं उठाऊंगा तो देखना, वहां पर तुम्हें गहरा गड्ढा नजर आएगा। और उन्होंने अंगूठा उठाया, नीचे सफेद सा गोल गड्ढा बना हुआ था। देखा, गाड़ीवान चुप रहा। शाम तक मेरा पैर सूज जाता है, इसीलिए मैंने बूट पहनना छोड़ दिया है, यह ढीली सी गुरबागी पहनता हूँ, इसमें से पैर निकाल कर बैठ जाता हूँ। बूट में तो पैर सारा वक्त दबता रहता है, बूट नहीं पहना जाता। गाड़ीवान के कान अभी भी नारंग साहब की दास्तान पर लगे थे, पर अब वह घूम घूम कर उनके चेहरे की ओर नहीं देख रहा था। अपनी अपनी किस्मत की बात है, नारंग साहब कहे जा रहे थे। पृष्ठ संख्या 129। घरवाली होती तो बेटी को संभाल लेती, ठीक रास्ते पर ले आती, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। वह बड़ी समझदार थी, बड़ी नेक बख्त थी। सारा वक्त उसका चेहरा खिला रहता था जैसे फूल खिला रहता है। जिस चीज को हाथ लगाती थी वही सोना हो जाता था। बस उसके जाने की देर थी कि घर में धूल उड़ने लगी है। सच पूछो तो तभी से मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। कुछ करने धरने को जी ही नहीं चाहता। नारंग साहब थोड़ी देर तक चुप बने रहे, फिर धीरे से बोले, मानो गाड़ीवान को कोई रहस्य बता रहे हो। मरने के बाद वह कई बार मुझे दर्शन दे चुकी है। नींद में आती है हंसती हुई, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा रोम रोम खिल उठता है। एक बार मैं खाट पर बैठा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने आंखें उठाई तो लगा जैसे वह मेरे आंसू में खड़ी है। ऐसे झिलमिला रही थी और हाथ के इशारे से मुझे तसल्ली दे रही थी। घबराओ नहीं प्रमिला, के सब काम सुलझ जाएंगे। चिंता किसी बात की नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते कहते बस ओझल हो गई। एक बार मैं कचहरी में से निकला तो वह कचहरी के फाटक पर खड़ी थी, बिल्कुल साफ, साक्षात देवी की तरह, जैसे दुपट्टा ओढ़े हुए थी। नीचे रेशमी कमीज और सलवार पहने हुए थी। कपड़े वह हमेशा रेशमी पहना करती थी। यों हाथ पसार कर कहने लगी, पम्मू अब तुम्हारे हवाले, यों यों डॉट डॉट। और नारंग साहब ने दायां हाथ पसार दिया, पम्मू अब तुम्हारे हवाले, और कहकर ओझल हो गई। मुझे आज तक वह क्षण नहीं भूला। पम्मू तब छोटी सी थी, दौड़ती थी तो कंधों पर बाल नाचते थे, भाग भाग कर तितलियां पकड़ती रहती थी। तभी मैंने फैसला किया कि दूसरी शादी नहीं करूंगा। बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने कहा दूसरी शादी नहीं करूंगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उनकी सौतेली माँ जाने उनके साथ कैसा व्यवहार करे। नारंग साहब फिर चुप हो गए। गाड़ीवान ने फिर एक बार होठों ही होठों में या अल्लाह कहा और छांटे से टांगे के बम को ठकुरा। टांगा मिशन अस्पताल की लंबी दीवार के सामने से गुजर रहा था और सड़क में हल्की सी ढलान थी। पुरानी दिल्ली का शताब्दियों पुराना इलाका था। पटरी पर जगह जगह हस्तरेखा पढ़ने वाले आचार्य जी अपनी छोटी छोटी दरियां बिछाए बैठे थे। कानों के ऊपर तिलियां खोसे तेल मालिश और चंपी करने वाले कमली वाले साधु, कहीं भिखारी, कहीं पटरी पर लेटे बेरोजगार आवारा लोग, कहीं कोई खोमचे वाला मुंह टेढ़ा किए आवाजें लगा रहा था। चारों ओर बासीपन था, लोगों के चीकट मैले। पृष्ठ संख्या 130, कपड़ों, गरीबी और बुढ़ापे की बास हवा में फैली थी। नारंग साहब चुप थे। गाड़ीवान ने हुंकार भरा पर नारंग साहब फिर भी चुप थे। उसने घूम कर देखा तो नारंग साहब की नज़र घोड़े की पीठ पर से हटकर बाईं ओर मिशन अस्पताल की लाल दीवार के साथ साथ पटरी पर दूर सामने से आती हुई एक महिला पर टिकी थी। नज़दीक पहुंचने पर वकील साहब ने सिर आगे की ओर बढ़ाकर झट से पुकारा, प्रमिला, पम्मो, रोको जी, टांगा रोको। देखते नहीं, मैं कह रहा हूँ टांगा रोको। टांगा रुक जाने पर नारंग साहब बम का सहारा लेकर उतरे और सड़क पार कर पटरी की ओर बढ़ गए। महिला हड़बड़ा कर ठिठक गई, नारंग साहब की ओर देखा, फिर सकुचा कर मुस्कुराई और सीधी अपनी राह चलने लगी। नहीं, वह नहीं है। नारंग साहब बुदबुदाते हुए लौट आए। वह भी कभी कभी बालों में फूल टांक लेती है, इसने भी टांक रखे थे। कदबुत में भी प्रमिला जितनी लग रही थी। मैंने समझा प्रमिला है, कई बार धोखा हो जाता है। वह भी सड़कों की खाक छानती फिरती है, मैंने समझा वही होगी। मैं कचहरी को जाता हूँ तो वह मेरे पीछे घर से निकल जाती है। अब उसे मैं कहाँ ढूंढता फिरूँ, मेरे अपने घुटनों में दर्द होता है। जी बाबूजी, गाड़ीवान ने धीमे से कहा, तुमने तो उसे नहीं देखा, जगह जगह टांगा चलाते हो, आज कहीं देखा तो नहीं है। उसे अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं करा देते बाबूजी? औरत जात का यों सड़कों पर घूमना ठीक नहीं, तरह तरह के लोग होते हैं। मैं इसे ले गया था, उन्होंने दाखिल नहीं किया। कहने लगे, सनक है, घर पर रखो, महीने दो महीने में ठीक हो जाएगी। उसके मन को धक्का लगा है, धक्का तो लगना ही था। घर वाले ने बसाने से जो इनकार कर दिया और बेटे को भी अपने पास रख लिया, धक्का तो लगना ही था। जी बाबूजी, अब मैं दिन भर उसे बांध कर तो नहीं रख सकता। पगला न गई होती तो शायद तरस खाकर बसा लेता, अब क्यों बसाएगा? कोई कहता था, रेलवे स्टेशन के पास उसे देखा है। कोई कहता है, एक रेस्तरां के बाहर खड़ी थी। कोई कहता है, किसी घर के चबूतरे पर बैठी थी, कंकड़ बटोरती रहती है। यह कोई हाल है? पृष्ठ संख्या 131। इसे घर में बैठाओ बाबूजी, औरत जात सड़कों पर घूमती अच्छी नहीं लगती। गाड़ीवान ने दूसरी बार कहा, पर नारंग साहब अपनी कहते चले जा रहे थे। खोजने पर मिल भी जाए तो घर में लाना उसे कौन सा आसान होता है? मान जाए तो मान जाए, पर अगर अपनी जिद पर आ जाए तो उसे टांगे में बैठाना नामुमकिन हो जाता है। सीधा जमीन पर बैठ जाती है, उसे घसीटना पड़ता है, हाथ पर पटकने लगती है। कोई एक मुसीबत है। अब मैं रोज रोज उसे कहाँ ढूंढता फिरूं? दिल्ली जैसा शहर टांगे पर बिठा कर लाऊं तो 2 रुपया टांगे वाला मांग लेता है, फिर कचहरी वक्त पर नहीं पहुंच पाता। जो थोड़ी सी कमाई हो पाती है वह इसी वक्त 12 बजे से पहले, 12 बजने की देर है कि मेरे लिए दिन डूब जाता है। यह बूढ़े बाप को कल पाने वाली बात नहीं तो क्या है? रह जाते हर आदमी पर नारंग साहब को ईर्ष्या हो रही थी। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था, अपने दायरे में बंधा था। उसकी रोजी बंधी थी, उसका घर परिवार जुड़ा था। कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, आकाश में घूमने वाले ग्रहों की तरह अपने अपने मंडल में घूमते हैं, अपना कारोबार करते हैं। एक मैं हूं कि कटी पतंग की तरह कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह भटक रहा हूँ, कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं। उधर देखो, पम्मो भटक रही है। बाजारों की खाक छानते जब नारंग साहब कचहरी के पास पहुंचे तो 12:30 बजा चाहते थे। हलफनामों और स्टाम्प पर दस्तखत कराने का वक्त लगभग निकल चुका था। एक और दिन इस नामुराद के पीछे बर्बाद हो गया, वह बड़बड़ाए। उनके दिल में ऐसी खीझ उठी कि मन चाहा अपनी बांह काट लें और प्रमिला मिले तो 2 चाटी उसके मुंह पर रसीद करें। मैं कमाऊंगा नहीं तो तू खाएगी कहाँ से? एक टूटा फूटा घर है, वह भी चाहती है बिक जाए। मन ही मन वह झुंझला उठे। 2-3 रुपये का काम मिल पाने की संभावना होती तो उन्हें ढांढस मिलती। डॉट डॉट। कचहरी के फाटक पर इधर उधर काले कोटों वाले वकील डोल रहे थे। उन्हें देखते ही नारंग साहब अपनी कमाई की स्थिति को भांप गए थे। हथेली में 3 बार मसल कर उन्होंने एक अठन्नी बूढ़े गाड़ीवान को पेश की। उन्हें झगड़े का डर था। जो गाड़ीवान ने झगड़ा किया तो 2-4 आने और देकर 12 आने तक में पिंड छुड़ा लूका। कोई कोई गाड़ीवान अठन्नी वहीं पटक कर गालियां बकता हुआ टांगा हाँक कर ले जाता था। यह बूढ़ा गाड़ीवान कैसा व्यवहार, पृष्ठ संख्या 132, करेगा? इससे भी तो मेरी स्थिति छिपी नहीं है। पर गाड़ीवान बड़ा शरीफ आदमी साबित हुआ। नहीं साहिब, आपसे पैसा लूंगा। या अल्लाह, जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। नहीं साहिब, बार बार ना कहें, मुझ नाचीज की यही खिदमत समझे। नहीं साहिब, डॉट डॉट। जब तांगा चला गया तो नारंग साहब का दिल भर आया। प्रमिला पर बड़बड़ाते रहने का उन्हें क्षोभ हुआ। उस बेचारी का क्या दोष, मैं दुखी हूं तो वह कौन सी सुखी है? किस्मत ही फूट जाए तो कोई क्या कर सकता है? मेरा तो रोम रोम, मेरे शरीर की तो बोटी बोटी उसकी सेवा करने के लिए हाजिर है। वह दुखी रहे तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? और वह बोझिल कदम घसीटते हुए कचहरी के अंदर चले गए।